अगली सूरत सूरत रोम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक ऐसी खुशखबरी दे दी गई जो उस वक़्त इम्पॉसिबल थी। 7-8 साल के अंदर अल्लाह ने उस नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। मुसलमानों के फतह और गलबे की बात थी। आज मेरे आपके लिए सूरत में एक बड़ी खुशाइंद बात है। आज का दौर मुसलमानों का अगर मगलूबियत का दौर है, महरूमियत का दौर है, ये सूरत पढ़ते हुए दुआ करें कि जैसे वहाँ खुशखबरी पूरी हुई, आज के दौर के बाद भी अल्लाह इस्लाम का गलबा ले आए। शर्त एक है कि हम अल्लाह के रास्तों में चलने को तैयार हों। इस सूरत में वमिन आयाती ही का लफ्ज़ आप बार बार देखेंगे। मक्की सूरत है मगर इसमें जन्नत और जहन्नम का जिक्र नहीं है। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। गुलिबतिर रूम। रूमी करीब की सरजमीन में मगलूब हो गए हैं और अपनी इस मगलूबियत के बाद चंद साल के अंदर वो गालिब हो जाएंगे। अल्लाह इस्लाम को भी गालिब कर दे। अल्लाह ही का इख्तियार है पहले भी और बाद में भी, और वो दिन होगा जब के अल्लाह की बख्शी हुई फतह पर मुसलमान खुशियाँ मनाएंगे। क्या हुआ था उस दिन? फतह बदर हो गई थी जिस दिन अल्लाह ने रोमियों को फतह दी थी। अल्लाह नुसरत अता फरमाता है जिसे चाहता है और वो जबरदस्त और रहीम है। ये वादा अल्लाह ने किया है। अल्लाह कभी अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून। अक्सर लोग ये बात क्यों नहीं जानते? इल्म की कमी। तो अल्लाह के वादों पे यकीन रखें तो हमेशा रोशन मुस्तकबिल के रास्ते देखेंगे। रह के लोग तो फरमाया लोगों का हाल क्या है? यालमून ज़ाहिरुम मिनल हयाति दुनिया। लोग दुनिया की जिंदगी का बस जाहरी पहलू जानते हैं और आखिरत से वो खुद ही गाफिल हैं। क्या उन्होंने कभी अपने आप में गौर व फिक्र नहीं किया? यहाँ देखिए जाहिर परस्ती की बात है। दुनिया का भी जाहिर मसला आप देखिए, बादाम है, कोई सिर्फ उसके छिलके ही इकट्ठे करके खुश हो जाए। फ्रूट है, ऊपर का जाहिर में तो छिलका ही दिख रहा होता है, उसको जमा कर ले, फ्रूट की वो लज्जत और टेस्ट पाएगा। बिल्कुल याद रखिए कि दुनिया में से भी लोगों ने लिया था, दुनिया का जाहरी छिलका ही लिया। जाहिर परस्ती बहुत बड़ा एक शिर्क होता है, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। जब किताबें हिदायत जिंदगी में नहीं खुलती ना, तो इंसान चमकती हुई चीजों को सोना समझ लेता है और असल सोने चांदी को पीछे करता है। चूने और मिट्टी की बनी हुई दीवारों पे गोल्डन कागज लगा के उसको लाखों करोड़ों में खरीद लेता है, क्योंकि जाहिर है। लेकिन आखिरत के घर बनाने के लिए दुनिया में अल्लाह के नाम पर कोई कोशिश करनी पड़े, सोच में पड़ जाता है। क्या जमूमियत का यही हाल नहीं है? हम अपनी जात पर कितना खर्च करते हैं, हम अपने घरों के नाम पे कितना खर्च करते हैं। और मैं अपने पाकिस्तानी कल्चर को जानती हूँ, जिंदगी के दो बड़े बड़े गोल हैं, अपना घर बन जाए और बच्चों की शादियां हो जाए, यही है ना? सारी जिंदगी इसके गिर्द घूमती है, सारी मसरूफियात इसमें है। कर्जों में पड़ेंगे, मेहनतें करेंगे, डबल ड्यूटी करेंगे, वीकेंड लेंगे, नाइट शिफ्ट करेंगे, अपना घर बन जाए। कभी ये सोच हमारी दीन के लिए बनी होती ना, तो आज हम इतनी गालियां ना खाते, आज हम इतने रुसवा ना होते। तो याद रखिए, अल्लाह जाहिर परस्तों को यहाँ ये बात करके बता रहा है कि जो सिर्फ जाहरी चीज़ों पे पढ़ते हैं, अंदर की खैर और खुशी से उनकी जिंदगियां महरूम है। वह मन आरादान जिक्री फाइन लहू मई शतन का सूरत तौहा में पढ़ चुके। दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हकीकत परस्त बना दे। आप इसको एक छोटी सी मिसाल से समझें कि बच्चा खरीदने जाएगा, ऊपर गोल्डन कागज लगा हुआ चीज लेके आ जाएगा चमकता हुआ देकर। बाप खरीदने जाएगा, वो असल सोने की चीज खरीदेगा। क्यों? वो चमकती चीज आज लाकर बच्चे ने थोड़ी सी तोड़ फोड़ के रखनी है बेकार। बाप कहेगा नहीं, सोना ले आऊं ताकि कभी जरूरत पड़ी तो बेच सकूं। दुनिया के लिए भी बंदा अक्लमंद और कयस कब होता है? जब अंदर की आंख खुलती है, वरना हम अपनी दुनिया की चीजों को भी जाया कर रहे होते हैं। अल्लाह ने जमीन और आसमान को और इन सारी चीजों को जो इनके दरमियान है बरहक और एक मुद्दते मुकर्रर ही के लिए पैदा किया, मगर बहुत से लोग अपने रब की मुलाकात के मुनकिर हैं। क्या अल्लाह सुबहान तआला इस बात से गिल्ट में जाते हैं? नऊज़ु बिल्लाह। हाय, बहुत सारे लोग तो मुझसे मिलने का शौक ही नहीं रखते। हाय लोहसनी। याद रखिए, अल्लाह भी पीपल प्लीजर नहीं है। तो अपने दिल से निकाल दीजिए, किसी को आपसे नहीं मिलना ना मिले, बस दीन सीख ले। अपनी जात से लोगों को जोड़ने और खींचते वाले जो होते हैं, वो बस दफा परेशान ही देखे गए हैं। इसलिए फरमाया जिनको नहीं मिलना वो ना मिलें। उर्दू में कहते हैं जहां चाह नहीं वहां राह नहीं। तुम रूठे हम झूठे, नहीं मिलना चाहते तो ना मिलो। और क्या ये लोग कभी जमीन में चले फिरे ही नहीं कि इन लोगों का इंजाम नजर आता जो इनसे पहले गुजर चुके हैं, वो इनसे ज्यादा ताकत रखते थे। अब देखिए तारीख सिखाई जा रही है कि माजी के आईने में जरा झांक के तो देखो, कोई तुम पहले ही ज्यादा खाते पीते लोग दुनिया में नहीं आए? तुम्हें नहीं अल्लाह ने दुनिया की ताकतें और इज्जतें और माल दिए? देखो उनके पास क्या कुछ था। फरमाया वो इनसे ज्यादा ताकत रखते थे, उन्होंने जमीन को खूब उधेड़ा था और उसे इतना आबाद किया था जितना उन्होंने नहीं किया। इनके पास इनके रसूल रोशन निशानियां लेकर आए, फिर अल्लाह इन पर जुल्म करने वाला ना था, मगर वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। आखिरकार जिन लोगों ने बुराइयां की थी इनका इंजाम बहुत बुरा हुआ, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया था और वो इनका मजाक उड़ाते थे। आप देखिए कि आज के दौर में अक्सर लोग कहते हैं बहुत प्रोग्रेस हुई है। ये आयत आपको मुझे बताती है कि पिछले दौर में प्रोग्रेस ज्यादा थी। पीछे पढ़ चुके हैं कैसे हजरत सुलेमान बड़े बड़े महल बनवाते थे, आगे भी आएगा। पहले दौर में हाथों से वो काम होते थे जो आज मशीनों से नहीं होते। आपने कभी मुगलिया दौर की बनी हुई इमारतें देखी हैं? और उस दौर के जो फर्श और मोती चीने और जो इतनी मजबूत इमारतें बन गई आज वैसी बनती हैं? क्या पता चला कि अल्लाह किसी कौम की तरक्की का दुश्मन नहीं है। उनकी प्रोग्रेस का सिंबल देखिए कि उन्होंने गहराइयों में खोद खोद कर सुरंगें बना ली और ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली। कौमे समूद के जरा घर तो देखिए तस्वीरों में जाकर, इतने बड़े ऊंचे लंबे हैं कि आज इंसान उसका तसव्वुर नहीं करता। तो क्या फिर अल्लाह को उनकी ये तरक्की पसंद नहीं आई? नहीं, अल्लाह की आयतों को झुठलाया और उनका मजाक उड़ाया। क्या पता चला कि तरक्की पे नहीं पकड़ा, आयतों को झुठलाने पे पकड़ा। आज भी यही चीज है। अल्लाह सुबहाना ताला आपको मुझे इसी बात की दावत देते हैं, दुनिया में तरक्की करो, भागो, जाओ, मेहनत करो। अल्लाह ही खल की इब्तिदा करता है, फिर वही इसको दोहराएगा, फिर इसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे। और जब वो साथ बर्बा होगी उस दिन मुजरिम हक दक रह जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कार्ड सामने आ गए। आप देखिए कि वो तालिबे इल्म जिसने इम्तिहान की तैयारी ना की हो, गलती लग जाए, अभी 15 दिन के बाद इम्तिहान होगा और सुबह सुबह फोन आ जाए दोस्त का, कब निकल रहे हो, किधर जाना है, आज इम्तिहान नहीं, आज कब है, वो तो अगले वीक है, फिर सोचिए क्या होगा। ऐसे लोगों का कयामत का दिन नाकाबले बर्दाश्त होगा जिन्होंने ना डेट शीट पढ़ी, ना सिलेबस खरीदा और ना के मेहनत की, और एकदम इम्तिहान देने का वक्त आ गया। अल्लाह से दुआ कीजिए दुनिया में हम तैयार हों। कहते हैं कि अचानक चोट बहुत ज्यादा लगती है, अगर आप और मैं आज इस दुनिया में उस इम्तिहान के लिए तैयार है ना, इंशाल्लाह वहां इतनी मुश्किल नहीं होगी। जो मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे उनके लिए तो हक दक के लफ्ज आ गए। इनके ठहराए हुए शरीकों में कोई इनका सिफारशी ना होगा और वो अपने शरीकों के मुनकर हो जाएंगे। जिस रोज वो साथ बरपा होगी उस दिन सब लोग अलग अलग गिरोहों में बट जाएंगे। जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं वो एक बाग में शादाओं फरहा रखे जाएंगे, और उस बाग का नाम है फिरौदतें यहबरून, जन्नत। अल्लाह हमें आपको उधर की तैयारी की तौफीक दे। और आप देखिए अल्लाह ने वक्त से पहले हर चीज बता दी, अब जो नहीं पढ़ेगा वो उसकी अपनी मर्जी। इसके बरक्स वमल्लज़ीन कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन्होंने कुफर किया और हमारी आयात को और आखरत की मुलाकात को झुटलाया, वो अजाब में हाजिर किए जाएंगे। देखिए कुफर, तकजीब और मुलाकात का इनकार, ये तीन बड़े जुर्म हैं जो नाफरमानियां कराते हैं और लाहुल हदीस में इंसान को गर्क कर देते हैं। बस तस्बीह करो अल्लाह की जब के तुम शाम करते हो और जब सुबह करते हो, आसमान और जमीन में इसके लिए हम्द है, और तस्बीह करो इसकी तीसरे पहर और जब के तुम पर जोहर का वक्त आता है, वो जिंदा को मुर्दे से निकालता है और मुर्दे को जिंदा में से निकाल लाता है और जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदगी बख्शता है, इसी तरह तुम लोग भी हालते मौत से निकाल लिए जाओगे। इशारतन नमाजों के औकात इन आयात में हमने पढ़े, और दूसरी बात यह है कि इसमें मरने के बाद जिंदा किए जाने की बात करके ये बता दिया कि इस दुनिया में अगर इस चीज का यकीन रखोगे तो तुम्हें ये भी यकीन आ जाएगा कि जिस तरह कल मुर्दों ने जिंदा होना है इसी तरह मुर्दा कौमें भी जिंदा हो सकती हैं। दिल मुर्दा दिल नहीं, इसे जिंदा कर दोबारा, अल्लाह आज हमारे दिलों को जिंदा कर दे। पर मैं इसकी निशानियों में यह है कि इसने तुमको मट्टी से पैदा किया। अपने चारों तरफ देखें तो मिट्टी ही दौड़ती फिर रही है, और इस मिट्टी से पैदा किया, फिर उसमें जज्बात डाल दिए, आंसू आ जाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, फिर यकायक तुम बशर होकर जमीन में फैलते चले जा रहे हो। जिस रब ने मिट्टी को इतना हुस्न दिया है, तसव्वुर में लाइए जन्नत में कितना हुस्न होगा। आपको पता है जन्नत में हम किस चीज से बनेंगे? यानी आज तो मिट्टी से बने हैं ना, सभी जानते हैं, मिट्टी के ऊपर एक पतली सी खाल डाल दी। जन्नत में हम अपने अखलाक से बनेंगे। जिसका जितना अखलाक खूबसूरत होगा उतना वो ब्यूटीफुल होगा। स्टेन फ्री स्किन चाहिए जन्नत में, तो अपने अखलाक को स्टेन फ्री कर लें। गोरा रंग चाहिए, तो वो अपने दिल को दुनिया में गोरा कर लें। जितना मेरा आपका अखलाक, हमारे मैनर्स, हमारे एटिकेट्स दुनिया में खूबसूरत होंगे, जन्नत में हम उतने ही हसीन होंगे। और उसकी निशानियों में एक ये है कि इसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन से बीवियां बनाई ताकि तुम इनके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते रहते हैं। आप में से उन लोगों का तذکرہ है कि जो शादी की नेमत से मालामाल है। अब देखिए कि यहाँ बीवी की बात के साथ दो बातें दिखी। पहली बात, हम जिन्स, मर्द और औरत। इमेजिन तो कीजिए, मर्द की शादी होती घोड़ी से और घोड़ी की शादी होती गधे से या किसी मर्द से। ये जो हम कहते हैं ना, वो परी कहाँ से लाऊं जिसे तेरी दुल्हन बनाऊं, तो ये हो ही नहीं सकता। परियों से शादियां नहीं होती। इसी तरह बाज दफा आपको पता है कुछ लोग औरतों पे जिन चिमट जाते हैं, तो वो जिन कहते हैं कि मेरे से शादी करो। तो अगर आपको अपने शौहर की कोई बात भी पसंद नहीं है, बिलफर्ज है कोई ऐसा, तो कम अज कम आज इस पे शुक्र करें कि वो मर्द तो है, शेर होता तो क्या बनता। और दूसरी तरफ यही बात है, आपको अपनी बीवी की कोई बात पसंद नहीं है, शुक्र कीजिए वो औरत तो है, कुछ और होती तो सोचिए, अल्लाह अकबर। दूसरी बात आप देखिए, यहां सुकून की बात है। चूंकि यहां हु की जमायर मर्द के लिए है, तो खास तौर पे औरत की तरफ इशारा है। औरत का नाम मैंने तो एक ही रखा हुआ है, सुकून देने वाली मशीन, पीस मेकर। मर्द का भी बहुत दखल होता है जिंदगी में पुरसकून होने पे और करने में, लेकिन औरत इसमें बहुत ज्यादा किरदार अदा कर सकती है। मसलन मर्द के जिंसी जज्बात को पूरा करके उसको जिंसी तौर पे पुरसकून करती है, उसके घर की सफाई करके उसके एथिक सेंस जो है, उसके हिस्से लताफत का यकीन रखती है, उसको खाना खिलाकर उसके पेट को सुकून देती है, उसके कपड़े धोकर उसको सुकून देती है। अगर बीवियां पुरसकून हो जाएं या सुकून देने वाली हो जाएं, तो याद रखिए फिर सिर्फ लहवल हदीस और फोहश और मुनकर में पड़े हुए मर्द तो एक तरफ कर दें, उनको तो छोड़ दें। वो कहते ना कि फूक कट सकता है फूल की पत्ती से हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलाम में दिल फरे बेअसर। अल्लाह किसी फुखश और गंदे मर्द से किसी औरत का वास्ता ना डाले। इसके अलावा आदात का फर्क, मिजाज का फर्क, मुल्कों का फर्क, लैंग्वेज बैरियर सब मिट जाता है अगर औरत को हिकमत आती हो अपने मर्द को पुरसकून करने की। अल्लाह ताला हमें इसी तरह बना दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नत में जाने वाली औरतों की सिफात ना बता दूं? अब आप पर मैं सोचें क्यों नहीं, तो फरमाया मोहब्बत करने वाली, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली, जब इसे गुस्सा आए या इसके साथ ज्यादती की जाए तो कहती है, मेरा हाथ आपके हाथ में है, अपनी आंखों में नींद का सुरमा नहीं लगाऊंगी जब तक के आप ना आ जाए। यदि शौहर के आने से पहले सोती भी नहीं, क्योंकि सोती उठी शक्ल देख के तो मियाँ ने फिर वापस चले जाना है। याद रखिए, एक आजिज मिजाज औरत अच्छी बीवी बनती है। खुलासा के सारी हदीस का, हाँ में हाँ मिलाने वाली, हर बात पे एतराज नहीं करती, जिरा नहीं करती, सवाल नहीं पूछती। जो औरत अपने मर्द का मिजाज समझ जाती है ना, बिलाखर वो अपने मर्द की दिल की रानी भी बन जाती है, उसकी घर की मलका भी बन जाती है। चूंकि शौहर से मोहब्बत करती है, उसकी जिम्मेदारियों को अपनी खुशी महसूस करती है। एक वक्त आता है कि आखिर मर्द फिर ऐसी अच्छी बीवियों के आगे हार ही जाते हैं। पेंडा लंबा होता है किसी का, वक्त लगता है, लेकिन जीत जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जुबान शीरी मुल्क गिरी, और खिदमत में अजमत है। जो चीज नहीं बर्दाश्त करती वो खिलाफ शरीयत बात नहीं बर्दाश्त करनी। मर्द लाहवल हदीस की तरह बुलाए नहीं, मर्द फुहश की तरफ बुलाए, नो। मर्द मुनकर की तरफ बुलाए, नो। जहां आपका दीन बिगड़े, या वो मर्द जो ऐसा तकाजा करे जो खुद उसको अल्लाह की नजरों में मुजरिम बना दे, वो नहीं माने। और कोई मजाजी खुदा नहीं होता। हमारा खुदा तो कोई नहीं, हमारा तो रब है। रब्बे हकीकी को खुश करने के लिए अपने शौहर के साथ मोहब्बत से रहें। आप देखिए, एक और चीज़ जो बहुत ही मफकूद होती जाती है वक्त के साथ, क्योंकि जज्बात बहुत जगह सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और वो क्या, अपने शौहर के साथ मोहब्बत का इजहार करना। बुजुर्ग खवातीन तो इस पे शर्मा के लिए झा जाती हैं, लो अब इस उम्र में उनसे मोहब्बत का इजहार करूं। आज ले जाइए बाबा जी के लिए एक फूल, कल आपको खुद छोड़ने आएंगे। और अगर पिछली 20-25 साल की शादी की जिंदगी में आपने नहीं कहा कहिए आई लव यू, फिर देखिए। एक बहुत प्यारा लेक्चर था, बहुत पहले मैंने सुना था, मेरा यासिर काजी साहब का था, इंग्लिश का लेक्चर था। तो उसमें उन्होंने इस मौजू पे बात की थी कि औरत क्या चाहती है, व्हाट अ वाइफ वॉन्ट। तो उसमें उन्होंने बताया था कि औरत की याददाश्त एक चीज में बड़ी कमजोर है, बार बार भूल जाती है। क्या? आई लव यू, कहा था मियाँ ने पहले। 20 साल बाद भी शादी से पूछे, डू यू लव मी, क्या आपको मुझसे प्यार है? तो क्या आपको अपने हस्बैंड से प्यार है? कितनी सिस्टर्स हैं जहाँ जो मैरिड हैं वो अपने हस्बैंड से कह सकती हैं आई लव यू? अल्लाह हु अकबर, अल्लाह आपके हस्बैंड पे रहम करे। चले आज कहें, फिर नताइज देखिए। आप देखिए कि जब से फुखश और मुनकर का कल्चर आम हुआ, अब यहां थोड़ा सा पारे का थीम जोड़ दूं आपसे, थोड़ी सी बात। जब से फिल्में ड्रामे देखे, सारा रोमांस, सारी डेटिंग, सारी चिटचैट शादी से पहले, और जब शादी होती है तो फिल्म खत्म हो जाती है। यानी गोया के सारा कुछ पहले करना है। इस्लाम क्या कहते हैं? शादी के बाद सब शुरू करो। रोमांस पसंद है इस्लाम में, बट बिफोर नहीं, आफ्टर मैरिज। आप देखिए कि दूसरी जो मोहब्बतें, लिविंग टुगेदर, और जिसको आप लोग बुरा भी नहीं कहते, अल्लाह माफ करे, उसमें कितने खतरे हैं। किसी को पता ना लग जाए, पकड़े ना जाए, बदनामी ना हो जाए, गुना भी है, हद से बढ़ गए तो कोड़े भी हैं, और न जाने क्या कुछ है। अफेयर करना है, हस्बैंड से कीजिए। मोहब्बत करनी है, उनके साथ करें। अपनी माँ के सामने भी अगर आप अपने शौहर का हाथ पकड़ लेती हैं, वो आपको गुस्से से नहीं घूरेगी। असल बात यह है कि अपने घरों को खुशगवार बनाए, हंसो और हंसाओ, जी और जीने दो। खुश मिजाज बीवी वल्लाह ही सबसे बड़ी नेमत है। बहुत सारी औरतें ये समझ ही नहीं पाई आज तक कि सिर्फ अपने माथे की तेवरी ठीक कर लें, बोलने की टोन को ठीक कर लें, तो ये जो आपका ख्याल है कि मेरे शौहर बड़े गुस्से वाले हैं, वो ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि घरों में सुकून दे दे, मिजाज शनास बने, हाइपर ना हो, मिजाक की बात करें, साफ सुथरे रहें, घर में अच्छे कपड़े पहने, उनको खुश रखें। आप बाहर की दुनिया में जो गंदगी वो देखते हैं, अगर एक बीवी एक मर्द के लिए एक पुरसकून तरीके से, कंफर्टेबल तरीके से रहती है, बहुत सारे मसले हल होते हैं। और याद रखिए, नेक मर्द है तो उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ उसकी बीवी होती है, क्योंकि वो बाहर से बहुत सारी नजरें झुका के आया होता है। लेकिन आप दीन के नाम पे जब कठिन, कठोर और अजीबोगरीब बन जाते हैं, तो उससे भी बाज दफा फिर बातें होती हैं दीन को। अल्लाह ताला से दुआ कि हमें हिकमतें अता फरमाए। फिर इसके बाद फरमाया, और इसकी निशानियों में से आसमान और जमीन की पैदाइश और तुम्हारी जुबानों और तुम्हारे रंगों का इख्तलाफ है। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं। दानिशमंद लोगों के लिए कितने मुख्तलिफ कलर्स हैं। आप देखिए, अपने कलर्स मैच करके देखें, एक के हाथ का रंग दूसरे से नहीं मिलेगा। एक अफ्रीकी ब्रदर हो और एक वाइट मुस्लिम हो, या वाइट अमेरिकन हो, या फलां, कितना जमीन आसमान का फर्क है। ये किसने किया? अल्लाह ने किया। हदीस से मिलता है कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मट्टी ली और उससे आटा गूंदा या खमीर गूंदा। इसीलिए फरमाया कि तुम्हारे रंगों में इख्तलाफ है, और कितनी मुख्तलिफ है, अल्लाह अकबर। और ये जो जुबानों का इख्तलाफ है, सुबहान अल्लाह, आपको पता है टोटल कितनी जुबानें हैं? कहते हैं 3,000 के करीब टोटल लैंग्वेजेस थी, जिसमें से अब खत्म होकर इस वक्त 1,000 रह गई हैं। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के 24 डिफरेंट एक्सेंट्स हैं। जब आप अमेरिका से यूरोप आते हैं, सबसे पहला मसला ये होता है, आपको इंग्लिश भी नहीं समझ आती। आज भी जो सही यूरोपियन इंग्लिश बोलते हैं, वो और अमेरिका की इंग्लिश में बहुत फर्क है। किसने पता किया, किस तरह ये सब हुआ, ये अल्लाह की शान है। और सोचिए, अगर हमारी जिल्दों का रंग ब्लू होता, पर्पल होता, कोई सजता हमें रंग? अल्लाह ने मट्टी का रंग कर दिया, उस पर गहरा पहन लो अच्छा लग जाता है, हल्का पहन लो अच्छा लग जाता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करने की जरूरत है कि उसने हमें कितनी प्यारी शक्ल दी, और इसकी निशानियों में से तुम्हारा रात और दिन को सोना और तुम्हारा इसके फजल को तलाश करना है। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर से सुनते हैं। सिर्फ सुनना नहीं, गौर से सुनना। वमिन आयाति ही युरीकुमुल बर्क का खौफ व तमा, और उसकी निशानियों में से एक ये भी है कि तुम्हें बिजली की चमक दिखाता है, खौफ के साथ भी और तमा के साथ भी। ये जिंदगी का असूल है, होप एंड फियर साथ साथ, उम्मीद और नाउम्मीदी या उम्मीद और खौफ साथ साथ। और आसमान से पानी बरसाता है, फिर इसके जरिए से जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदगी बख्शता है। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं, और उसकी निशानियों में से एक ये है कि आसमान और जमीन इसके हुक्म से कायम है। फिर जूं ही कि उसने तुम्हें जमीन से पुकारा, बस एक ही पुकार में अचानक तुम निकल आओगे। जमीन और आसमान में जो भी हैं उसके बंदे हैं, सब के सब इसी के ताबे फरमान हैं। वही है जो तख्लीक की इब्तिदा करता है, फिर इसका इयादा करेगा, और ये उसके लिए आसान तर है। आसमान और जमीन में इसकी सिफत सबसे बरतर, और वो जबरदस्त और हकीम है। अल्लाह हमें उसकी निशानियों और उसकी कायनात में फैली हुई खूबसूरत चीज़ों पर गौर व फिक्र करने वाला बना दे। अब एक मिसाल आ रही है, वो तुम्हें खुद अपनी ही जात से एक मिसाल देता है। क्या तुम्हारे इन गुलामों में से जो तुम्हारी मलकियत में हैं, कुछ गुलाम ऐसे भी हैं जो हमारे दिए हुए माल और दौलत में तुम्हारे साथ बराबर के शरीक हों, और तुम उनसे इस तरह डरते हो जिस तरह आपस में अपने हम सरों से डरते हो। इस तरह हम आयात खोल कर पेश करते हैं इन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं, मगर ये जालिम बेसोचे समझे अपने तखय्युलात के पीछे चल पड़े हैं। अब कौन इस शख्स को रास्ता दिखा सकता है जिसे अल्लाह ने भटका दिया हो? ऐसे लोगों का तो कोई मददगार नहीं हो सकता। अल्लाह हमें भटकने से बचा। फाकिम वजह का ले दीनी हनीफा, पस है नबी और नबी के पैरोकारों, यकसू होकर अपना रुख इस दीन की सिमत में जमा दो। कायम हो जाओ उस फितरत पर जिस पर अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया। अल्लाह की बनाई हुई साख बदली नहीं जा सकती। यहाँ दुआ करते हैं अल्लाह हमें फोकस्ड करते हैं। याद रखिए, फुहश और मुनकर बंदे को फोकस्ड होने से रोकते हैं। जरा सा देख लूँ क्या आ रहा है, अच्छा खबरें सुन लूँ, अच्छा वो ऐड देख लूँ, अच्छा जरा इफ्तारी का टाइम देख लूँ, और आपने टीवी खोला पता नहीं क्या कुछ देखते रह गए, टाइम ही चला गया। ये भी चीज़ आज जिंदगी में फोकस को खत्म करती जा रही है। हम इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फोन खोला चलें दुआएं पढ़ लें, देखा तो मैसेज आया, मतलब मैसेज में वीडियो थी, वीडियो खोली तो यूट्यूब पे पहुंच गए, यूट्यूब पे गए तो अंदर पता नहीं क्या कुछ खुल गया, आधे घंटे बाद पता चलेगा ओहो नमाज का वक्त जा रहा है। बी फोकस्ड, अल्लाह हमें फोकस्ड कर दे। यही बिल्कुल दुरास्त और दुरुस्त दीन है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। कायम हो जाओ इस बात पर अल्लाह की तरफ रजू करते हुए, और डरो इससे और नमाज कायम करो, और ना हो जाओ इन मुशरिकीन में से जिन्होंने अपना अपना दीन अलग बना लिया और गिरोहों में बट गए, और हर गिरोह के पास जो कुछ है वो इसी में मगन है। दुआ करें अल्लाह हमें अच्छी चीज़ों में मगन कर दे, वरना बंदा उसी में खुश है। आप देखिए, हर बंदे का एक फोकल पॉइंट होता है, एक शाकिला होती है, एक उसका विज होता है। दुआ कीजिए अल्लाह हमारा विज इस कुरान को बना दे। लोगों का हाल यह है कि जब इन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो अपने रब की तरफ रजू करके इसको पुकारते हैं, फिर जब कुछ अपनी रहमत का जायका इन्हें चखा देता है तो यकायक इनमें से कुछ लोग शिर्क करने लगते हैं। कैसे? उसी नेमत को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल करने लगते हैं, उसी औलाद के साथ ऐसे ऐसे काम शुरू हो जाते हैं जो अल्लाह को नाराज करें। क्यों करते हैं? ताकि हमारे किए हुए एहसान की नाशुक्री करें, या मुहासबा करते हैं क्या? जब अल्लाह मेरे पर कोई रहमत करता है तो मैं उसकी नाशुक्री बन जाती हूँ? लेकिन अल्लाह ने हुसन दिया, नाशुक्रापन क्या है? इसी हुसन को फितना बनाकर दूसरों में नुमाया होकर फिरते रहे। अल्लाह ने पतली कमर दे दी तो जरूरी है कि इसको ऐसे कपड़ों में पहनकर अपने आप को बाहर निकाला जाए कि हर एक देकर एक दफा तो हसरत करे। याद रखिए, कुल्लू ज़ी नेमतिन मख्ज़ूद, हर नेमत वाला हसद किया जाता है। आपको क्या पता कि आप ऐसे हालुलिये में बाहर गई कि आप तो चांद का टुकड़ा लग रही थी, पर कितनों की नजरें लग गई और आप बीमार होकर घर पड़ गई। अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। अच्छा मजे कर लो, अन करीब तुम्हें मालूम हो जाएगा क्या हमने कोई सनद और दलील इन पर नाजिल की है जो शहादत देती हो इस शिर्क की सदाकत पर जो ये कर रहे हैं। और अब आगे देखिए एक और कैफियत, जब हम लोगों को रहमत का जायका चखाते हैं, वो कहते हैं कि घर में दाने आने लगते हैं, दौलत आने लगती है, नई नई दौलत मिलने लगती है, तो वो इस पर भूल जाते हैं। एक जुमला जहन में आता है, लफ्ज़ ही कह लें, नौ दौलतिया पाँव जमीन पे नहीं रखता। कुछ होते जद्दी पुश्ती खाते पीते, उनमें एक ठहराव होता है, उनमें एक सुकून होता है। कुछ को नई नई दौलत मिलती है ना, तो वो बात ही पैसे से करता है, गाड़ी की चाबी हाथ में घुमाएगा, फोन उठा उठा के फिरता है। हर वक्त मेरे इतने मुरब्बे, मेरी इतनी जमीन है, मेरा ऐसा घर वो घर। और जिनके पास जद्दी पूछते थे वो कहते ये को बताने की बात है, किसी को क्या लगे। अबू बकर कितने अमीर थे, अब्दुलरहमान बिन औफ कितने अमीर थे, उस्मान गनी कितने अमीर थे, उनकी दौलत कहाँ खुलती थी। हमारी हालत अगर आप देखें तो अबू बकर उमर उस्मान के दौलतमंद होने का हमें कैसे पता चला। अबू बकर ने अल्लाह के रस्तों में माल के दरवाजे खोल दिए। मक्की दौर के 13 साल में दो शख्सियात का माल लगा दीन में, जिसको मैं कहती हूं कि वही शुरू का दौर था। सिर्फ दो पर्सनैलिटीज का लगा, क्यों? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते थे, कपड़े का काम था आपका, बहुत कामयाब ताजिर थे, आपकी शादी की वजह ही आपकी ताजिराना खसूसियात बनी। पर जू ही आप पर नबूवत का बोझ डाला गया, आपने वो काम छोड़ा, क्योंकि अगर उसमें पड़ते तो ये तबलीग का काम कैसे करते। तो वो दो शख्सियात जिनका माल इस्लाम की जड़ों में लगा है, एक अबू बकर सिद्दीक और एक आपकी मेरी तरह खातून हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा थी। इन दो के माल से अल्लाह ने ये इस्लाम की इमारत खड़ी की है। कोई तस्वुर भी कर सकता है आज अबू बकर और खदीजा के अजर को? आज होने वाला हर रिवॉर्ड उनके अकाउंट में जा रहा है। दुआ करें कि अल्लाह हमें उस वक्त नेकी करने वाला बना ले जो कोई ना करे, और अल्लाह हमें उन नेकियों का ख्याल डाल दे जो किसी ने ना की हो, वरना नई दौलत सिर्फ पंपर जो। आज हमारी दौलत कब दिखती है? हमारे घरों को देखकर, हमारे कीमती जोड़ों को देखकर, हमारी शादियों के डिस्प्ले को देखकर। ये दौलत का इजहार नहीं है। फिर आप देखिए, यहां रहमत की बात दौलत के बिना लीजिए। एक होता है जिसके अंदर इल्म जाता है, शुरू से अल्लाह के हुक्म से दीन से ताल्लुक है, दीनी माहौल, दीन के साथ ताल्लुक, माँ बाप ने भी की, फिर उस्ताद मिलते गए, उसका जो दीन होता है ना वो बड़ा ठहराव वाला होता है। जिस तरह एक नौ दौलतिया होता है ना, इस तरह एक नौ इल्मिया भी होता है। नया नया इल्म आता है अल्लाह की बना, उससे ज्यादा खतरनाक कोई कॉम्बिनेशन नहीं। वो भी फलता फूलता है, 10 आयतें याद हो गई हैं, तहज्जुद शुरू कर दी है, समझ आ गया। तो याद रखिए, जिस तरह वो लोग नहीं अच्छा लगता, ये भी अच्छा नहीं लगता। जो इल्म आ रहा है ना उसको अंदर लाए, ख्वाब भी सच्चे आने लग गए हैं, नबी भी आए थे ख्वाब में। तुम्हें क्या पता मुझे क्या क्या नज़ारे होते हैं, क्या करिश्मे दिखते हैं, मुझे जन्नत दिखती है, फलां दिखता है। भाई सब्र तो कीजिए, इसको अंदर रखिए। तो याद रखिए, बहुत डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला हमें फूलने से बचाए। और जब इनके अपने किए करतूतों पर इन पर कोई मुसीबत आती है तो यकायक मायूस होने लगते हैं, फिर नजर लगती है। या कुछ लोग वाकई जिनका इल्म होता है वो उनकी टूटी हुई आयतें पढ़ के हंसते हैं, ये देखो ये कुरान पढ़ा रहे थे, आयत भी सीधी नहीं पढ़ते, और ये देखो ये पैसों की ढेंगे मार रहे थे, इनको क्या पता हमारे पास कितना है, ये अलग बातें हम बताते नहीं। यानी याद रखिए, हम जिनके सामने ढेंगे मारते हैं वो अकेले में हंस रहे होते हैं, उनकी हंसी निकल रही होती है, वो छुपा लेते हैं क्योंकि उनको हमारी इज्जत प्यारी है। क्या ये लोग देखते नहीं कि अल्लाह ही रिस्क कुशादा करता है जिसका चाहता है, और तंग करता है जिसका चाहता है। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। अल्लाह हमें इन निशानियों पर गौर व फिक्र वाला बना दे।